ओम शांति। आज बाबा की मुरली में याद है, बाबा गरीब निवाज है और असली चीज है योग बल। याद है सभी को, आज की मुरली में योग बल पर विशेष ध्यान खिंचाया। योग बल ही हमें काम आएगा। आज किसी का मेरे को फोन आया, क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन जो प्राय लोग पूछा करते थे, आजकल कम पूछते हैं, योग बल से सतयुग में संतान कैसे उत्पन्न होगी। कहा हमसे बाहर के लोग भी पूछते हैं और मेरा भी ये प्रश्न है, कुमार पूछ रहा था। मैंने कहा फोन पे इसका उत्तर मैं ज्यादा तो नहीं दे सकता, पर पहले ये जानना आवश्यक है योग बल है क्या चीज। जानना ही नहीं, ये पता हो अनुभवों में कि योग बल संसार की सबसे बड़ी पावर है ना। जो बल सर्वशक्तिवान में है वो योगियों में आ जाता है, तो उससे बहुत बड़े बड़े काम होंगे। प्रकृति ही उससे कंट्रोल्ड होती है, शरीरों में सारे परिवर्तन उससे होंगे, तब कोई समझ सकता है योग बल से सतयुग में क्या क्या होगा। तो हमें अपने योग बल को बढ़ाना है। बाबा की मुरली के अनुसार अव्यक्त सभी सकास देने की सेवा कौन कौन कर रहे हैं, बहुत अच्छा। जो नहीं कर रहे वो और ध्यान दें जरा, कर रहे हैं माना थोड़ी सी देर कर ली और हाथ उठ गया कि कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अच्छी तरह कर रहे हैं। मेरा एक संकल्प है उस दिन से ही, और हम सब मिलकर वो काम करेंगे। वो मिस है अभी तक, हमसे भी मिस है, भक्तों की आवाज सुनाई देना। कैसे सुनाई देगी, किन को सुनाई देगी, प्लेन है स्वच्छ बुद्धि वैराग्य, और बोलो पूर्वजपन के नशे में, और दूसरा नशा
कंसंट्रेशन,
इष्ट देव देवी हूँ, भक्तों की आवाज है ना वो। तो भक्तों का जो स्वरूप है दयालु कृपालु, वो हमारा इमर्ज होता रहेगा अगर हम इस स्वमान को बहुत बढ़ाएंगे। तो हमें आवाज सुनने को आएगी और बुद्धि स्वच्छ और एकाग्र। स्वच्छ बुद्धि एकाग्र होगी, लेकिन ध्यान देना है हमें बुद्धि को स्वच्छ रखना है। एक संकल्प कर दे, अब हमारी ये बुद्धि अब केवल बाबा के लिए स्थान है और कोई चीज को स्थान नहीं। बहुत कुछ भर लेता है ना मनुष्य अपनी बुद्धि में, पता भी नहीं चलता क्या क्या भर लिया। कोई भी ऐसा विचार जो हमारी खुशी को नष्ट करे, जो हमारे योग को तोड़े, जो हमारे संबंधों को बिगाड़े, वो गंदगी है, उसकी हमें पूरी सफाई रखनी है। बहुत अच्छी है बात, हमारे मन में गूंजती रहे, मेरी बुद्धि अब बाबा के बैठने का सिंहासन है, इसमें और कुछ नहीं, डस्टबिन नहीं। ये बहुत डस्टबिन बनाया है ना हमने इसको, उससे गंदगी से बहुत परेशानियां हुई हैं आत्मा को, अब हमें इससे स्वयं को मुक्त करना है। तो आवाज सुनाई देंगी, आपे ही आएंगी, वो आपे ही आएंगी। पुराणों में है ना ये बात, विष्णु से सैया पर विराजमान है, किसी भक्त पर बहुत आपदा आ जाती है, वो बहुत दिल से जो पुकारता है तो मस्ती में लेटे हुए विष्णु का ध्यान भंग होता है, दिखाई देता है वहां भक्त, और तुरंत दिखाया है या तो हाथ से सकास देते हैं, किरणें निकल कर उसको जाती हैं, मदद हो जाती है पूरी। कहीं दिखाया स्वदर्शन चक्र छोड़ देते हैं, जो संघर्ष है, जो कहीं गड़बड़ हो रही वो नष्ट हो जाता है। शंकर के लिए भी यही दिखाया। मुझे किसी ने एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी, सीरियल में दिखा रहे होंगे, उसका लड़का कार्तिकेय देवताओं का सेनापति, तो असुरों से जो युद्ध हो रहा है तो कोई असुर कार्तिकेय को उठाकर ऊपर ले गया है, ले जा रहा है ऊपर, लक्ष्य है उसका, ऊपर से गिरा देंगे। और वो याद करता है पिताजी महादेव, नीचे से शंकर जी एकदम कार्तिकेय को ऊपर ले जा रहे, वहीं से सकाश हाथ ऐसे किया, सकाश पहुंचती है तुरंत कार्तिकेय को, और कार्तिकेय उनसे छूटकर धीरे से आ जाता है शंकर की गोद में। तो बहुत अच्छे सीन है ये। देखो पुराणों के लोग भी आजकल जो सीरियल्स बनाते हैं, कितनी बुद्धिमानी का कार्य ये करते हैं, इस ढंग से दिखा देते हैं। तो हम भी ऐसे ही भक्तों की आवाज सुने, बहुत अच्छी एकाग्रता चाहिए। लंबा समय हमें शिव बाबा के सिवाय कुछ दिखाई न दे, आत्मा शिव बाबा या अपने स्वरूप, लंबा समय की स्थिरता हमें इसके योग्य बनाएगी कि भक्तों की आवाज अंदर फीलिंग्स में आने लगे। अंदर तो ऐसा ही लगेगा ना आवाज आई होगी, फीलिंग्स पर लगेगा आवाज आई जैसे कि, और तुरंत हम अपना कार्य करें। जैसे अब कहां भूकंप आया है, न्यूजीलैंड में, अच्छा बड़ा है। मैं तो ज्यादा सुना नहीं, पर इतना ही सुना था कि क्राइस्ट चर्च सिटी है, मैं भी वहां गया था एक बार, अच्छा सुंदर सिटी है वो, कहा वो तबाह हो गया है। मनुष्य तो थोड़े ही दिखाते हैं मर गए, पर नष्ट कितना हो जाता है, बिजली पानी सड़कें टूट फूट जाए तो कितनी तकलीफ हो जाती है। तो ऐसे में हम सभी क्या करेंगे, वहां सकाश देंगे, हम थोड़ा अभ्यास करेंगे। मुझे संकल्प आ रहा है लाल लाइट करें, देखो आप कर लो, 5 मिनट डीप साइलेंस में बैठकर सभी क्राइस्ट चर्च के ऊपर चलेंगे। बस संकल्प करो, हम एक सिटी के ऊपर हैं, उसका नाम क्राइस्ट चर्च है, और हम फरिश्ते रूप में हैं ऊपर। चले देखे अपने को, मैं फरिश्ता क्राइस्ट चर्च के ऊपर न्यूजीलैंड ये ईस्ट में है। मुझ पर बाबा की शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं। अब ये शक्तियों की किरणें नीचे फैल रही हैं, बाबा की शक्तियों की किरणें नीचे फैल रही हैं। संकल्प करें सभी के चित्त शांत हो जाएं, सभी के दुख और भय समाप्त हो जाएं। सभी को ये ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त हों। सब महसूस करें कि हमारे फरिश्ते, हमारे ईश्वर, हमारे रक्षक हमारे साथ हैं। आने वाले समय में हम सभी ऐसे ही बहुत सुनते ही रहेंगे। जहां तहां प्रकृति के प्रकोप बहुत तबाही करेंगे संसार की, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिसमें मनुष्य का वश नहीं चलता। हर व्यक्ति उसको स्वीकार करता ही है। दुख शांति बहुत बढ़ती है। हम सभी अपने योग बल को बहुत बढ़ाएंगे ताकि हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को तुरंत सुख दे सके। लंबा काल दो चीजों पे ध्यान देंगे। लंबा काल मन की स्थिति दुखों से मुक्त रहे, एक बात। लंबा काल जीवन निर्विघ्न रहे, क्योंकि दुखों में और विघ्नों में आत्मा की बहुत शक्तियां नष्ट होती हैं, तेजी से नष्ट हो जाती है। हमने बहुत अच्छा योग किया और स्थिति को विघ्न में कर लिया तो तेजी से शक्तियां नष्ट हो गई। विघ्नों का आना अलग बात, लेकिन स्थिति विघ्न में बना दिया उससे शक्तियां नष्ट। आज मुझे एक स्लोगन बाबा का याद रहा, बहुत पहले का स्लोगन है व्यर्थ मुरली का। अगर तुम अचल अडोल स्थिति में रहो तो इस तख्त के नीचे, अचल अडोल स्थिति के तख्त के नीचे सभी विघ्न दबकर नष्ट हो जाएंगे। बड़ी सुख संवाद है ये। हमारी स्थिति अचल अडोल रहती है। अभी बाबा ने एक दो लाइन में बोला था, हलचल ना हो अचल अडोल है, वो रेफरेंस भी नहीं था, बीच में बोल दिया। तो इस स्थिति का प्रभाव इतना ज्यादा रहेगा कि हमारे वाइब्रेशंस समस्याओं को विघ्नों को नष्ट करेंगे। तो हम ध्यान दें, लंबा काल दुखों से मुक्त, बड़े दुखों की तो बात नहीं हमारे पास, दुखों की सूक्ष्म लहर भी ना आए और निर्विघ्न रहे हम, तो हमारा योग बल भी अच्छा होगा और हम दूसरों के दुख हर सकेंगे, विघ्न नष्ट कर सकेंगे। कैसे रहेंगे हम दुखों से मुक्त विघ्नों से मुक्त, दोनों ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। कोई कुछ हमें कह देता है, कोई हमारी इच्छाओं के विरुद्ध बात हो जाती है, जीवन में चलते चलते कोई भी विघ्न भी आ सकता है। आगे तो ऐसा समय आएगा कि हमारे मन चित स्वप्न में भी नहीं होगी और बातें आती रहेंगी। हमें सब कुछ स्वीकार करके ही चलना पड़ेगा। बहुत अच्छी धारणा होती है स्वीकार करना। अगर आत्मा स्वीकार नहीं करती कुछ चीजों को तो मन में संघर्ष हो जाता है, उससे छोटी बात बड़ी हो जाती है, जीवन विघ्नों से लिप्त होने लगता है। तो हम दुखों से मुक्त रहने के लिए हर चीज को सहज भाव से लें। शरीर के रोग भी हमें दुखी न करें, दूसरों का व्यवहार हमें दुखी न करे, आजकल बहुत ये चीज है। आज मुझे बहुत हंसी आई, मैं बहुत जल्दी उठा, फिर नींद आ गई थोड़ी, तो 4:45 से पहले ही किसी का फोन आया, ये बहन मुझे बहुत तंग कर रही है, मैं इसे कैसे तंग करूं? उसको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे हंसी भी आए, मैंने पूछा नहीं कौन बोल रही हो, कोई कन्या थी घर में रहती है। तो लंबी चौड़ी बात कर रही, तो बाकी मेरे रही सही, नींद भी खत्म हो गई उसमें, लंबी चौड़ी बात कर रही, एक एक बात बता रही, वो मेरे से ऐसे कर रही ऐसे कर रही, मैं उसे कैसे तंग करूं? देखो 3-4 बार उसने यही बोला होगा। मैंने कहा तुम क्यों तंग करना चाहते, मेरा मतलब ये है मैं कैसे ठीक रहूं। फिर उसको समझ में आया कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। फिर मैंने कहा भाई योग का समय हो गया है, बंद कर दिया। फिर 5:45 हुए थे, फिर फोन आ गया, हाँ भाई जी आपने विधि तो बताई नहीं। मैंने कहा तुम अभी बोलना ही बंद नहीं करती, मुझे मौका ही नहीं देती कि मैं कुछ बताऊं। कहा अच्छा अब मैं सुनूंगी आपकी बात। तो दूसरों का व्यवहार कईयों को बहुत दुखी कर देता है ना। सबसे बड़ी बात आजकल के संसार में ये हो गई है, हम इसमें ऐसा अपना जीवन बनाएं, ऐसे अपने विचार बनाएं, अपने को मजबूत करें या हल्का करें कि दूसरों का व्यवहार हमें दुखी ना करे। ऐसा कर देंगे दूसरा गलत व्यवहार कर करके दुखी हो जाए कि ये तो दुखी नहीं होते। हम ऐसा संकल्प कर ले, हमें दुख को अंदर प्रवेश करने नहीं देना है। लेकिन ये ध्यान रखना है जो मनुष्य दूसरों को दुख नहीं देता वही दुखों में सुखी रह सकता है। अगर हमारे द्वारा दूसरों को कष्ट दिया जाता है तो हमारी सूक्ष्म शक्तियां नष्ट होती हैं, पुण्य नष्ट होता है। तो जब हमें कहीं दुख मिलने लगता है तो हम ज्यादा दुखी हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना है और हमें पता होना चाहिए कहाँ हमारे बोल से व्यवहार से कोई दुखी होता है, और ये एक बहुत बड़ी कला है। देखिए मौन संसार में कई लोग रख लेते हैं, हमने देखा हमारे यहाँ भी बहुत पहले 1-2 लोग इसलिए मौन रखते थे कि उनकी वाणी कड़वी थी, रियलाइज होता था हम कड़वा बोलते हैं, मौन रख लिया। दूसरे हमें बोलते हैं ज्यादा मौन रखेंगे तो वो भी नहीं बोलेंगे, भले ही कान खुले हुए पर फिर भी मौन है तो लोग कम बोलेंगे ना। लेकिन जब मौन टूटता था तो जो अंदर किसी ने बोला भी है वो समाया हुआ रहता था ना, वो सब बाहर निकल जाता था। मौन से भी श्रेष्ठ है संयम, जीवन में संयम, वाचा पर कंट्रोल, सुखदायी वचन बोलना, सहज भाव से बोलना। हम ध्यान दें इस पे, कोई बात, कोई घटना, कोई दुर्घटना, शरीर के रोग, मृत्यु हमारे सुखों को छीन न ले जाए, और अगर छीने तो जल्दी हम ठीक कर लें अपने को। दूसरा कदम ये है, मान लो कोई बात हमें प्रभावित कर गई, निगेटिवली प्रभावित कर गई, तो हम उससे जल्दी मुक्त होकर सुख स्वरूप स्थिति में आ जाएं। लंबा समय निर्विघ्न जीवन जीना ये एक जीवन जीने का सुंदर तरीका है, ये कला है बहुत बड़ी। कुछ लोग इस संसार में हैं, उनके जीवन में बहुत विघ्न आते हैं। क्यों आते हैं? सबसे पहली बात जो मनुष्य को ध्यान रखनी है, ये सारे संसार के लिए इम्पोर्टेंट बात है, मनुष्य का अपना स्वभाव संस्कार ही उसके विघ्नों का जिम्मेदार है। कुछ विघ्न ऐसे हैं जो पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण आएंगे, उस पर तो किसी का वश अब चलेगा नहीं, उसके लिए हमारे पास योग बल है, हम योग बल से उन चीजों को नष्ट करें। आजकल बहुत ब्राह्मणों के बीच हम देखते हैं, मुझे जो फोन आते हैं उनमें ये कि बहुतों का योग चलते चलते कटता है, टूटता है, और फिर बहुत दिन तक नहीं लगता। सूक्ष्म इफेक्ट होता है पास्ट के भी कर्मों का। चलते चलते अचानक खुशी गुम हो गई, कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं हुई, कारण है सूक्ष्म विकर्मों का। वो वर्तमान के भी हो सकते हैं जिनकी पहचान उस आत्मा को न हो कि हमसे कोई विकर्म हुआ है। हमने कुछ सोच लिया हो निगेटिव, हम कुछ व्यर्थ बातों में रह गए हो जीवन में, तो खुशी नष्ट हो जाती है। तो हमें योग बल बढ़ाना है और जीवन ऐसे ढंग से जीना है कि विघ्न कम से कम हो। रास्ते में एक बैल आ रहा है हमें मारने के लिए, हम क्या करेंगे? टकराएंगे या हटके चलेंगे? कौन कौन सोचेंगे टकरा के चलना चाहिए, हम पावरफुल हैं बैल से तो क्यों हम रास्ता बदलें? हैं कोई ऐसे? ऐसे भी तो कोई बहादुर होते हैं ना, रास्ते में जो आ गया उसे हटाना है हमें। एक ये तरीका, ऐसे कम लोग मिलेंगे लेकिन हम अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेते हैं ना, जाओ भाई तुम। तो हम महत्व दें कि हमें जीवन में विघ्नों का आह्वान नहीं करना है, अर्थात संकल्प शक्ति को नष्ट नहीं करना है। बाकी कुछ चीज चली जाए वो वापिस आ सकती है, संकल्प शक्ति नष्ट होती है तो उसका इफेक्ट लंबा समय स्थिति पर आ जाता है। बहुत सुंदर ये जीवन की धारणा है, संकल्प शक्ति और स्थिति बिगाड़नी नहीं। बातें आएंगी जाएंगी। बाबा का बहुत अच्छा महावाक्य था पिछले साल भी, जो बातें जाने वाली हैं उनके कारण तुम अपनी श्रेष्ठ स्थिति को क्यों बिगाड़ते हो? बातें तो जाएंगी, हर पल सब कुछ बदल रहा है। हम अपने मन में ये बात समा लें, सब कुछ परिवर्तनशील है, जो अब है वो अगले क्षणों में नहीं होगा। हम देख रहे हैं जो पिछले क्षणों में था वो अब नहीं है। हम अपने आज के दिन पर नजर डालें, कितने सीन हमारे जीवन में आज के जीवन में बदले होंगे, सब कुछ बदल रहा है। इसलिए सभी संकल्प करें हमें योग बल जमा करके भगवान के काम आना है। मैं तो आप सबको संकल्प दूंगा, पहले भी दिया है, बाबा से बातें कर दो, अपने अंतर मन में संकल्प समा दो, हम अपने को ऐसा बनाएं कि जन्म जन्म भगवान के और उसके संसार के काम आते रहें। बाबा को हम कह दे जैसे भगवान के लिए है ना, जब जब धर्म ग्लानी होगी मैं आऊंगा। हम भी संकल्प कर लें, बाबा जब जब आपकी सृष्टि में कष्ट होगा, धर्म को कोई नष्ट करना चाहेगा, गरीबों को असहायों को कोई दबाएगा परेशान करेगा, तब हम आपके काम आए। पसंद है? इसके लिए हमें अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर्स को भरना होगा, योग बल इसे कहते हैं हम। ये हमारा योग बल संकल्प बल के रूप में काम करता रहेगा हर जन्म, तो हम मनुष्यों के भी काम आते रहें, काम आए हम, दुखियों के काम आए, असहायों के काम आए, परेशान लोगों के काम आए, जिनका कोई नहीं उनके काम आए। अब से ही हम ये संस्कार अपने अंदर डालें। देखिए बहुत सुंदर समय हमारे सामने आ रहा है, संकल्प कर दें हमें अपने पास ऐसा योग बल जमा करना है जो आने वाले विनाश के काल में हम संसार को बहुत कुछ दे सके, सुख देने की, वाइब्रेशंस देने की बहुत बहुत जरूरत होगी सबको। तो हमारे जीवन का पर्पज ही ये है, हमारे जीवन का महत्व ही ये है कि हम अपने को ऐसा समर्थ बना लें कि समय पर हम सबके काम आ जाएं। चाहे कोई डॉक्टर हो बहुत एक्सपर्ट, हमारे यहाँ बैठे हैं ना डॉक्टर भी, सीमा बहन को मालूम है आंखों के रोगी कैसे कष्ट पाते हैं, सबका ऑपरेशन कर देते ना एक ही दिन में 40-50-60 का कर दिया, सुख मिलता है ना लोगों को, सूक्ष्म दुआएं मिलती हैं। स्थूल कार्यों में भी हमें दुआएं मिलती हैं, और जब हम सकाश देंगे संसार को तो अनेक दुखी आत्माएं सुखी होकर शांत होकर सच्चे दिल से हमें शुभ भावनाएं दुआएं बहुत गुड फीलिंग्स देंगी, प्यार देंगी। और ये चीजें जीवन के लिए बहुत बड़ी हैं। किसी को संसार का प्यार मिलने लगे, प्यार एक शक्ति बन जाती है, प्रेम एक बल बन जाता है जो आत्माओं को बहुत आगे बढ़ाता है। विघ्नों को पार करने में अनेक आत्माओं का प्यार अगर हमारे साथ है तो वो प्यार का बल हमें सहज ही विघ्नों को पार करा देता है। सभी अपने से बातें करेंगे, हमें बिना कहीं उलझाए हुए स्वयं को कहीं उलझाना नहीं है, बच के चल देना है। अरे बैल मुझे मार, हिंदी में कहावत है ना, इससे बाहर रहना है। बैल मारने आ रहा है, झुक के हट के निकल जाना है। हमें बैल मारने तो नहीं आएगा, पर ह्यूमन बैल बहुत आते हैं ना मारने टकराने। हम हाजी करके झुक कर लक्ष्य रहे। कई बार हम समझ सकते हैं, समझ लेते हैं कि झुक जाना तो कमजोरी है, ये तो व्यक्ति क्या समझेगा, हमें कायरता है। पर अगर हमारा ये लक्ष्य है कि हमें अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर्स जमा करनी है जो बड़े बड़े काम आएंगी, ये तो छोटा सा काम है ना, सामने वाला टकरा रहा है, हम उसे हरा दें, हम खुश हो जाएं, हमने उस पर जीत पा ली, ये छोटी जीत है। पर हमें बड़ी जीत पानी है। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ इतिहास में कई ऐसे योद्धा बहादुर राजा हुए हैं द्वापुर में, द्वापुर पूरे द्वापुर में, जिन्होंने भारत की ऐसे समय में मदद कहेंगे हम इसे कि जब विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करके कब्जा कर लेना चाहते थे, अंग्रेजों ने तो अब कब्जा किया था, द्वापर युग में भी बहुत बार बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत को नष्ट करने की कोशिश की। उस समय सारे बड़े देशों पर राज करना तो कठिन होता था, लेकिन लूटपाट करके माल बहुत ले जाते थे ना। अगर उनके साथ 50,000 सैनिक हैं तो सब भर के जाएंगे ना, हाथी हैं घोड़े हैं सबको भर के ले जाते थे भारत से, क्योंकि भारत तो सोने की चिड़िया था ना, द्वापुर में भी सोने की चिड़िया था, बहुत धन संपदा थी यहाँ पर। तो ऐसे में एक एक सम्राट ऐसा हुआ, जैसे आप चाणक्य के बारे में जानते हैं, चाणक्य की छवि थोड़ी गलत रहती है लोगों के मन में, जो बड़ा चालाक आदमी था कि अगर कोई एक हाथ उठाए दुश्मन तो उसकी नीति थी उसे काट डालो, ये उसके बारे में थोड़ी गलत फहमियां हैं। कूटनीतिज्ञ था बहुत जबरदस्त, राजाओं को मिला लेना, उनको उनकी शक्तियों का एहसास कराना, युद्ध की एक सुंदर प्लानिंग कर देना। केवल ताकत से थोड़ा ही लड़ा जाता है, बुद्धि से। तो मैं सोचा करता हूँ ये बहादुर लोग भारत पे आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, एक एक राजा ने उनका सामना करके उन्हें नष्ट करके भेज दिया वापिस। भारत के अनेक बार द्वापर युग में भी विदेशियों का अधिकार हो गया, गंगा तक, गंगा के पार नहीं जा सके क्योंकि पुल नहीं होते थे। एक एक व्यक्ति ने उनको भारत से निकाल दिया, छोटे छोटे राजा ने। तो मैं सोचा करता हूँ ये सब शक्तियां संगम युग पर आत्माओं ने भरी हैं। भारत से सच्चा प्यार हम सबके मन में रहता है ना, क्योंकि हम भारत की सच्ची सेवा भी करते हैं इस समय, और भारत के मालिक मालिक बने रहते हैं ना लंबा काल, तो भारत भूमि से बहुत प्यार रहता है, वो प्यार हम यहाँ भरते हैं। तो ये योग बल, ये विजय संगम युग पर माया पर विजय के संस्कार द्वापर युग में युद्ध में विजय दिलाते हैं। स्थूल विजय होती है सूक्ष्म विजय के आधार से। तो हम सारी सृष्टि के हीरो एक्टर बन जाएंगे अगर हम अपने अंदर योग बल बढ़ाएंगे। देखो भारत में आप जानते हैं बिल्कुल एंड में, अभी पिछली शताब्दी में 19वीं आधी 20वीं, जब तक भारत में अंग्रेजों का राज था, आप सब जो इतिहास पढ़े जानते होंगे, उन्होंने जाना होगा कि मुस्लिम राज में मुस्लिम्स ने बहुत कोशिश की हिंदू धर्म को नष्ट करके मुस्लिम धर्म स्थापित कर देना भारत में। अंग्रेजों ने पूरी कोशिश की क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा कि क्रिश्चियन मिशनरी का इतना जाल फैला दिया जाए कि हिंदू धर्म पूरी तरह समाप्त हो जाए, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में थी। लेकिन कुछ धर्म नेता ऐसे प्रकट हुए जिन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी के फोर्स को रोक दिया। अब जानते उनमें से एक थे कौन? स्वामी विवेकानंद। एक थे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद। उसी समय कई लोग हुए जो बुद्धिमत्ता में इतने तेज हुए, जिनके पास स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा थी कि क्रिश्चियन मिशनरी वालों ने सोचा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इनके इस महान शक्तिशाली धर्म के आगे हम कहाँ टिकेंगे। फोर्स कम हो गया, बिल्कुल फोर्स कम हो गया उनको। दयानंद ने, स्वामी दयानंद ने ऐसा प्रचार कर दिया कि गांव गांव में क्रिश्चियन मिशनरी जा ही नहीं सकती थी। उनसे वैसे ऐसे प्रश्न करते थे, वो भाग जाते थे हार मान के। और भी उस समय कई ऐसे सुधारक हुए जिन्हें देखकर क्रिश्चियन मिशनरी का फोर्स खत्म हो गया। मुस्लिम जब सत्ता पावर में थी और वो बिल्कुल धर्म परिवर्तन करने पे तुले हुए थे, तो आप जानते हैं भक्ति काल कहा जाता है हिंदी साहित्य में एक काल, जब कबीर, सूरदास, तुलसीदास, स्वामी रामदास और कई ऐसे महाराष्ट्र में भी और यूपी में बहुत सारे स्वामी हुए। उनका फोर्स इतना ज्यादा था कि मुस्लिम्स की सारी शक्तियां फीकी पड़ गई। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। कबीर के गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामानंद। उस समय के बहुत प्रसिद्ध संत थे, शक्तियों से भरपूर, काशी में रहते थे। मुसलमानों ने सुल्तान को विवश किया कि 16 कड़े कानून हिंदुओं के विरुद्ध लगा दिए जाएं। कड़े थे वो, जिनमें हिंदू बिल्कुल शक्तिहीन हो जाएं। कि शादी हो उस पर भी टैक्स, बच्चे हो उस पर भी टैक्स, हिंदू धर्म पर भी टैक्स और बहुत चीजों, मृत्यु पर भी टैक्स, ऐसे बहुत सारे ये नहीं कर सकते नहीं। तो उन्हें पता था कि इनका संत स्वामी रामानंद बहुत प्रसिद्ध है, तो वो एक बहुत बहुत सारे लोग मुस्लिम्स मिलकर गंगा किनारे किनारे चले रामानंद की झोंपड़ी की तरफ, इसे मार दिया जाए, इनका शक्ति खत्म हो जाएगी। आ रहे थे वो, धूल उड़ती थी। रामानंद के शिष्य ने देखा कि लोग आ रहे हैं महाराज, मुस्लिम्स आ रहे हैं और ये दिख रहा था कि ये आपको कष्ट पहुंचाने आ रहे हैं। तो देखिए, अब की कहानी है, कोई पौराणिक कहानी नहीं, हजारों साल पहले की, 450 साल हुए होंगे। स्वामी रामानंद ने शंख बजा दिया और शंख बजते ही सभी के सब बेहोश होके गिर गए और उन्हें कोई उठा नहीं सका, वो बेहोश। आवाज पहुंची 2-4 दिन में सुल्तान के पास। सुल्तान ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था कि किसी धर्म, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, कि किसी धर्म के विरुद्ध ऐसे कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, सब स्वतंत्र हैं अपना अपना करने के लिए। उसने अपने मंत्री और अपने लोगों को स्वामी रामानंद के पास भेजा, रिक्वेस्ट की कि ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम ये सब कैंसिल कर देते हैं 16 के 16 सिद्धांत। उसने फिर से शंख बजाया, सब जिंदे होके भाग गए कि कहां फंस गए थे यहाँ। तो ये सब लोग क्या थे? हिंदू धर्म को बचाने वाले। और वो कौन है सब? वो हम में से ही कुछ आत्माएं हैं। ये सन्यासी जैसे नहीं थे, समाज सुधारक जैसे थे। स्वामी विवेकानंद यद्यपि सन्यास में था, लेकिन वो सन्यासी जैसा था ही नहीं, समाज सुधारक थे ये। इन लोगों ने भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। तो वो हम में से ही हैं कुछ आत्माएं जिन्होंने यहाँ देश प्रेम, देश की सेवा योग बल से, ज्ञान से, पवित्रता से की है। तो हम सब हीरो एक्टर्स हैं। हम अब बहुत बड़े कार्य हमारे सामने होंगे, वो हमें पूर्ण करने हैं। अब संसार को माया से बचाना है, माया नष्ट हो रही है और विनाश काल में हमें बड़े बड़े काम करने हैं। आज तो दादी जानकी ने स्वीकार किया था ना हम सबके बीच में, लेकिन वो एक ग्रुप आया हुआ जो ज्ञान सरोवर में था वो मिलने आ गया है, तो दादी उसको टाइम दे दिया है। शैलेंद्र भाई जब भी अब दादी समय दे, चाहे कल ही दे है दो चार दिन में, तो कर लेना प्रोग्राम फिर से। चलो ओम शांति। योग बल बढ़ाएंगे सभी, बहुत अच्छा। न्यूजीलैंड वालों को सकास देंगे दो तीन बार सारे दिन में, अच्छी सकास, एक आधा मिनट नहीं, दस दस मिनट कम से कम। वही गीत बजा देना भाई, पूरा बजा दो, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा।
मेरा बाबा मेरा मेरा बाबा।